اسماء الحسنی پر تدبر کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام البرو، جو بعض دفعہ البارو سے بھی بولا جاتا ہے، اس پہ غور کریں گے. دونوں لفظ البر اور البار دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہی محسن. بار اور اس کا روٹ ہے. سورۃ طور کی آیت 28 میں آتا ہے انہ ہو البر الرحیم، وہ واقعی بڑا محسن رحیم ہے. اسی طرح سورۃ ابراہیم کی آیت 32 سے 34 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. یہ ہے البار، وہ دیتا ہے جو انسان مانگتا ہے، انسان کی فطرت کی ہر مانگ کو پورا کرتا ہے. زندگی میں جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ دیتا ہے. انسان کی بقا، اس کا ارتقاء، اس کی دنیا میں موجودگی، اس کی فنا، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس جس چیز کی ضرورت انسان کو زندگی میں ہوتی ہے اللہ سب کچھ دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا محسن وہی ہے. سورۃ نحل کی آیت 4 سے 16، 4 to 16 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے ایک ذرا سی بوند سے انسان کو پیدا کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جھگڑالو انسان بن جاتا ہے. اس نے جانور پیدا کیے جس میں ہمارے لیے پوشاک رکھی، خوراک رکھی. پڑھیں گے آپ تو دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا. جانور ہمارا سامان ڈھوتے ہیں، ہماری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے ہیں، فائدے کی چیزیں اس نے پیدا کی. کسی نے ہم پہ کبھی اتنے احسان کیے ہوں گے؟ صرف اگر قرآن پاک کو اس نگاہ سے آپ دیکھیں تو آپ کو بیسیوں کیا سینکڑوں آیتیں ملیں گی جو اللہ کی نعمتوں کو جمع کر رہی ہیں. اگر آپ پورے قرآن کو پڑھتے ہوئے شروع سے پہلے پارے سے لے کر آخری تک ایک لسٹ بنا لیں کن کن نعمتوں کا تذکرہ، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ چیزیں جن کو ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں وہ البرو نے ہمیں دیں، ہم پہ احسان کیے. دنیا میں کوئی ایک چھوٹا سا احسان کر دے تو ہم جھکے جاتے ہیں، دبے جاتے ہیں، لیکن وہ ذات جس نے جانور، پانی، کھیتیاں، انگور، کھجور، زیتون، پھل، پھول، سورج، چاند، ستارے، زمین، رنگ، پھل، کیا کچھ پیدا نہیں کیا. ایک ایک کونے پہ نظر ڈال کے دیکھیں گھر کے، آپ کو اللہ کے احسانات دکھیں گے. اس کے احسانات کے نیچے انسان اپنے آپ کو دبتا ہوا محسوس کرتا ہے. سمندروں کو دیکھ لیں، اس میں تازہ تازہ گوشت، گہنے، زیورات، موتی، گونگے، کشتیاں، پانی، پہاڑ، پہاڑوں پہ موجود سبزہ، پھل، پھول، ستارے، کیا کچھ ہے. اسی طرح سورۃ نحل کی آیت 78 سے 81 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کا تذکرہ کیا کہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ جانتے ہی نہ تھے، پھر تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والا دل دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، پھر پرندوں کی طرف اشارہ کیا کیسے زمین و آسمان کے بیچ میں اڑتے ہیں، پھر گھروں کی بات کی، جانوروں کی کھالوں سے گھر بنانے کی بات ہوئی، اون اور بالوں سے پہننے والے کپڑے، لباس، سویٹر. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وائن تود نعمت اللہ لا تخصوها، کبھی گرمی کا لباس، کبھی سردی کا لباس، کبھی جنگ میں کام آنے والے لباس. جس بندے کو اتنی نعمتیں ملیں تو دینے والی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اس کو اپنے آپ کو رب کے سامنے بالکل ایک جھکے ہوئے جانور سے زیادہ نہیں جھکانا چاہیے؟ پھر اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ نعمتیں خود ہی مل گئیں، ایسے ہی مل گئیں، میری قابلیت، میری خوش قسمتی، बस ये तो होना ही था, ये तो मेरी मेहनत, ये तो मेरे बड़ों की मेहनत, तो आप सोचिए कि फिर इससे बड़ा एहसान ना फरामोश कौन होगा। और तो और, जो उसने एहसान किए, उसने इंसान की रूहानी तरक्की के लिए किताबें, सहीफे भेजे, अंबिया कराम को भेजा। और एहसान देखिए, गुनाहगार इंसान जब अपने गुनाह पे शर्मिंदा होके तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसको मुकज़्ज़बीन में नहीं शामिल होने देता, क्या ये अल्लाह ताला के एहसान नहीं? और अगर अलबर्र को देखना है तो सूरत अर्रहमान को पढ़ ले। बार बार अल्लाह ताला कहता है, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। इसी सूरत की आयत 39 में अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, जब तुम मुजरिम बन के अपने रब के सामने पेश किए जाओगे, फिर हम देखेंगे कि तुम हमारे किस किस एहसान का इनकार करते हो। सूरत तकासुर में आता है, लतुसअलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम, अलबत्ता ज़रूर तुम पूछे जाओगे उस दिन नेमतों के बारे में। ज़रा सोचिएगा इस पे, किसी एक ऐसे इंसान को सोचिए जिसने कभी कोई एक एहसान किया हो। मसलन कोई किसी को अपना गुर्दा दे दे, क्या ख्याल है सारी ज़िंदगी उसके सामने आंखें उठेंगी? कोई ब्लड ही दे दे, कोई थोड़ा सा वक्त दे दे, कुछ माल दे दे, लोग अपनी उतरन दे देते हैं गरीबों को, और वो गरीब सारी ज़िंदगी उनके सामने फिर झुकते फिरते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि अलबार के बोझ को, उसके वज़न, उसकी नेमतों को महसूस किया जाए, क्योंकि जो बंदा मुहसिन के साथ अच्छा मामला नहीं करता, वो कभी भी काबिले भरोसा इंसान नहीं हो सकता। सारी दुनिया के लिए आप अच्छे हों, अगर आप नेमतें देने वाले की कदर नहीं पहचानेंगे तो कोई भी इंसान आपको अच्छा नहीं कहेगा। आप लिस्ट भी बना सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या कुछ दिया, फिर उन सारी चीज़ों को जमा करके लिखें कि मैं इसके बदले में क्या कर रही हूँ। ना शुक्री के शुक्रगुजारी। एक किसी का कॉल बड़ा अच्छा याद आ गया, उन्होंने कहा कि देखो, हर दिन जब सूरज निकलता है, सुबह होती है, कितनी नेमतें तुम्हारी तरफ आती हैं, सूरज, रोशनी, भूख में खाना, सारा दिन नेमतें खाते खाते रात करते हो। कभी तुम भी तो सोचो कि इसके जवाब में रात को तुम्हारा क्या जाता होगा ऊपर, तुम कैसे अमाल भेज रहे हो अल्लाह की तरफ। मेरा अल्लाह, ये सोचकर तो इंसान वाकई गमजदा होने लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला खुद ही कहते हैं कि लोगों, तुम मेरी नेमतों को लिख नहीं सकते। वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही, कि अगर ज़मीन के सारे दरख्त कलम बन जाएं और समंदर स्याही में बदल जाएं, और इसके साथ सात समंदरों की स्याही और मिल जाए, सब मदद करें लेकिन तुम्हारे रब की बातें पूरी नहीं होती। कैसे पूरी हों? इसलिए कि उसने जो कुछ दिया और जो हमने देख लिया, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको तो अभी हमने जाना भी नहीं, हमारे अपने जिस्म के अंदर कितनी मशीनें काम कर रही हैं जिनको अभी तक हमने महसूस ही नहीं किया। चलते हैं फिरते हैं, कुछ एहसास नहीं होता, पता तब चलता है कि उसने दिया हुआ था जब वो छिन जाती है नेमत। दिन भर चलते फिरते दौड़ते भागते हैं, लेकिन जब घुटनों में दर्दें होती हैं फिर कहते हैं, हाय, ये भी कोई नेमत थी। तो उसका सबसे बड़ा एहसान तो यह कि उसने इंसान बनाया। ना बनाता इंसान, हमें किसकी ताकत थी कि इंसान बनते? कोई ऐसा लोथड़ा पैदा हो जाता हमारी माँ के घर में कि जिसको इंसान तो क्या, जानवर भी ना समझ सको। फिर देखिए कि मुसलमान बनाया, इस्लाम दिया, अपनी किताब से जोड़ा, तौबा की तौफीक दी, अपना खौफ दिया, अपनी गंदगी साफ़ करने की तौफीक दी। सिर्फ इसी को ही देख लें, अगर हमारी गंदगी कोई और साफ़ करता तो क्या होता? जिस्म का एक एक हिस्सा वैसा बनाया जैसा होना चाहिए। इंसानों पे नहीं उसके एहसान, जानवरों पे भी उसके एहसान है। ऐसे लगता है कि हर एक को बिल्कुल वैसा बनाया जैसा बनाना चाहिए। कानों को देख लें, उसके अंदर इतने कर्व्स डाल दिए कि कोई कीड़ा अंदर जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता। जानवर अपने कान साफ़ नहीं कर सकते, तो उनके कानों पर इतने बाल उगा दिए कि जो मट्टी और गर्दोगुबार को वैसे ही बाहर रहने दें, कीड़े मकोड़े अंदर जाने ही ना दें। पानी में रहने वाले जानवर, बतख और इस तरह की मुर्गाबियाँ उनके कानों के पर्दे बाहर से बंदी कर दिए कि कहीं अंदर पानी ना चला जाए। चलने का देखिए, बैठने का अंदाज देखिए, आंखों को देखिए, सात पर्दों से आंखों के नूर की हिफाजत की। सबसे नाजुक उस गिना जाता है आंख। एक ऐसे घड़े में जाके आंख रख दी कि इधर उधर हड्डियों की दीवारें लगा दी, कहीं नाक की हड्डी, कहीं माथे की हड्डी, के कुछ अगर हो भी तो इस हड्डी की वजह से आंख बच जाए। फिर पलकें, पपोटे, जरा सी चीज सामने से आई तो बंद हो गए। कौन है? अलबार है। दिमाग में तो ऐसे लगता है कि पूरे कंप्यूटर फिट कर दिए, पूरा बिजली घर बना दिया, जो हर वक्त बिजली पैदा करता है, जो मुख्तलिफ ताकत की चीज़ें पैदा करता है, जिससे सारे जिस्म का काम चलता है। नाक को देखिए, उसके अंदर कितने सुराख हैं। फिल्टर के लिए अंदर बाल लगा दिए, वाइपर्स लगे हुए हैं छोटे छोटे। ऐसी रतूबत पैदा कर दी कि अंदर गंदी चीज़ें जा ही ना सकें। सूंघने की ऐसी हिस दे दी कि सूंघ के पता चल जाए कि क्या ठीक है क्या गलत है। और गले को देख ले, हलक के अंदर कैसे खिड़कियां लगा दी। खाना अपनी जगह पे जाता है, सांस अपनी जगह से निकलता है। फिर मैदे की जो नाली है उसको ही देख ले, कैसे बना दिया कि खाना एक दफ़ा नीचे चला जाए तो ऊपर ना आए। हम खाना खा के लेटते और खाना ऊपर आ जाता। गंदगी निकलने के रास्तों को देख लें, इस तरह वन साइडेड बनाती है कि एक दफ़ा गंदगी बाहर जाएगी तो अंदर ना आए, वरना क्या होता? अपनी गंदगी खुद ही बर्दाश्त ना कर सकते। कितने जरासीम रगों के अंदर रात दिन बगैर थके और आराम किए हुए अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। एंटीबॉडीज, ज़रा देखा जिस्म में कोई जरासीम दाखिल हुआ, झटपट जाके हमले कर दिए। जहाँ कहीं हमारी रगों ने देखा कि गंदा मादा खून में आ रहा है तो अपनी दीवारों से उनको निगल लिया। अल्लाह अकबर। हाफ़ज़ा क्या है? मेमोरी क्या है? याद करना, कुव्वते ख्याल, सोचना, तदब्बर करना। सिर्फ ब्रेन को देख लें, इतना रकीक होता है कि शायद ही कुछ 10% दिमाग के ऑपरेशन आज भी कामयाब होते होंगे। इतना गूदा अंडे की झिल्ली की तरह का देखें और उसको खोपड़ी की हड्डी के अंदर रख दिया कि कहीं से चोट ना लग जाए, और उसके अंदर से सारी मैसेजिंग हो रही है। वही खौफ, वही डर, वही फैसला, डिसीजन पावर। जिस्म के मसल्स को देखें, जब हिलाते हैं तो पता ही नहीं चलता कैसे हिल रहे हैं, कहीं खुलते कहीं बंद होते। दर्द हुआ तो पूरे जिस्म को पता चल जाता है कि यहाँ दर्द है। मक्खी बैठती है नाक पे और दिमाग से पैगाम जाता है हाथ को कि मक्खी को हटाओ। नींद क्या है? नींद कैसे आ जाती है? अल्लाह ने जिमाइयाँ पैदा कर दी कि अब सो जाओ, थोड़ी ऑक्सीजन ले लो, थोड़ा काम कम करो ताकि जिस्म तुम्हारा ठीक हो। भूख कैसे लगती है? अगर भूख ही ना लगती, क्या ये मोहसिन का एहसान नहीं है? भूखे मर जाते हमें पता ही ना चलता कि भूख लगी हुई थी। और दिमाग की इतनी बारीक रगें पूरे जिस्म में मवासलाती निज़ाम को संभाले हुए हैं। कहाँ से पैगाम कहाँ जाता है? बाल की एक एक जड़ तक उसका पैगाम जाता है, पलकों तक, उसके अंदर तक ऐसे ऐसे सिस्टम लगे हुए हल्के हल्के जोड़ कि कहीं कुछ हो जाए उसका पैगाम दूर से दूसरी तरफ जाता है। तो क्या ये अलबार का एहसान नहीं है? ये उस मोहसिन के एहसानात है जिसको भुला के जीते हैं, तभी तो खुश हैं। एक दफ़ा उसके नेमतों को, उसके एहसानात को देख लें, कभी सर नहीं उठा सकते। हमारा इस नाम के साथ ताल्लुक़ क्या होना चाहिए कि उसके एहसानों को माने? हम भी दूसरों पर एहसान करें, ख़ुद पे एहसान करें, गलत कामों से ख़ुद को बचाकर, जहन्नम का ईंधन बनने से बचाकर। जिस ज़ात ने हमारे जिस्म को इतने प्यार और इतनी मोहब्बत से बनाया, क्या हम उसको जहन्नुम में गिरा देंगे? अल्लाह नहीं चाहता कि जिस मशीन को मैंने इतने प्यार और इतनी मोहब्बत से बनाया, तुम गलत काम करके उसको आग में डलवाते हो। तो उस मोहसन के एहसानात का यही बदला है कि उसको भी याद रखा जाए और ख़ुद को गलत कामों से बचाया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गौर व फिक्र करने वाला दिल दिमाग दे दे, समझ दे दे, नाफरमानियों से बचा कर फरमाबरदारियों के रास्ते में लगा दे, और हमें एहसान फरामोश बनाने की बजाय एहसान को समझने वाला बना दे, मानने वाला बना दे। हमारे दिल के बंद दरवाज़ों को अल्लाह खोल दे।